दूसरा हिस्सा शुरू होता है हमारे सबक का। खुलासा करती हूँ आयतों का एंड तक, फिर इंशाल्लाह इस पर हम मजीद बात करेंगे। 98 कुल या अहलल किताब लिमा तकफुरून बी आयातिल्लाह। एक एक चीज को नोट करिएगा। कह दीजिए अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हो? वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इसे देख रहा है। पहला सवाल लिख लें, अहले किताब से अल्लाह ताला ने ये बात कही कि तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो? कौन सी आयतें? कुरान की सूरत में जो नाजिल हो रही थी और ये मुसलसल उसको झुटला रहे थे। साथ ही उनको बता दिया गया कि वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून, अल्लाह उस पर गवाह है जो तुम करते हो, यानी तुम्हारे अमल, तुम्हारे करतूत, तुम्हारे काम, ये सारे के सारे अल्लाह को खूब अच्छी तरह से पता है। अगली आयत पे चलिए, फिर बात कठी होगी। कुल याहलल किताबी, कह दीजिए ए अहले किताब, लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, तुम क्यों रोकते हो अल्लाह के रास्ते से? सवाल पैदा होता है किसको रोकते हैं? फरमाए मन आमना, मन आमना उसको जो कि ईमान ले आता, यानी जो भी ईमान लेकर आता है तुम उसको अल्लाह के रास्तों से क्यों रोकते हो? तब हो ना हाई वाजा, क्या तुम इसमें खजी पैदा करना चाहते हो, टेढ़ापन पैदा करना चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि अहले ईमान तुम्हारी इन साजिशों पर चलें और ईमान लाए और छोड़ दें, जैसे तुम सुबह को ईमान लाकर शाम को ईमान छोड़ देते हो? क्या तुम्हारी ये नीयतें? वन तुम शुहदा, हालांकि तुम खुद गवाह हो। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है इससे जो तुम कर रहे हो। तुम्हारी इन सारी साजिशों का अल्लाह को पता है। दो आयतें बेसिकली, 98 और 99। क्या आपने इन आयतों की शिद्दत को महसूस किया? ऐसे लग रहा है कि अहले किताब को डांट पिलाई जा रही है, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि पीछे उन्होंने एतराजात किए थे ना, तो उन्हें एतराजात का जवाब तो दे दिया, लेकिन अब आगे से उनको समझाया जा रहा है कि तुम ये उल्टे सीधे काम छोड़ दो। इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई दीन का नाम ले रहा है, अगर तुम कहते हो कि हम भी नबियों की नस्ल से हैं, तो फिर तुम वो बातें क्यों नहीं मानते जो इस नबी के जरिए से आता है? फिर इसके बाद आप देखिए कि इधर इनको ये बात कहकर ये एहसास भी दिलाया गया कि मुसलमान होने का ये मतलब नहीं है कि मुसलमान आंखें बंद करके हर एक की हर बात सुनने लग जाए क्योंकि वह मुसलमान है। तो आज हम मुसलमानों के लिए इसमें सबक है, हर साजिश के पीछे छुपा हुआ हाथ देखो, आप उनके छुपे हुए अजायम ढूंढो, और उसके बाद फिर तुम अल्लाह की बात की तरफ चल पड़ो। आप देखिए कि यहां तक फुरूना बे आयातिल्लाह क्यों कहा गया, क्या इनकार था आयतों का? पहले तो आप देखिए कि उन्होंने अल्लाह के पहले घर का इनकार किया, बैतुल्लाह को पहला घर नहीं मानते, फिर अल्लाह के हलाल करदा जो हलाल थे उसको हलाल नहीं माना, बात गुजर चुकी ना, कुल्लू तामिन काना हिलन में, यानी अल्लाह के हलाल और हराम का इनकार किया। तीसरी चीज है अल्लाह के नबियों का इनकार किया, किसी को माना किसी को ना माना। चौथी चीज, उन्होंने अल्लाह की किताबों का इनकार किया। ये जो बात कही गई कि लिमा तकफुरून बि आयातिल्लाहि वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून, तो ये डराने का अंदाज है ना। सवाल पैदा होता है ये अंदाज क्यों इख्तियार किया गया, वजह इसका जवाब नोट कीजिएगा। ये इसलिए किया गया कि इनको अपनी असलियत खुल जाए, जो खुद को बड़ा मोमिन समझते हैं इनको पता चल जाए कि हम गलत कर रहे हैं। दूसरा ये कि मोमिनों को भी आगाह किया जा रहा है कि आंखें खोल कर जियो। तीसरा एक और तासुर भी था कि इनके दिल में खौफ पैदा हो और ये गलत हरकतें छोड़ दें। ये बात कि अल्लाह ताला मेरे अमाल पे गवाह है, ये बंदे को सीधा कर देती है। सही काम करके भी इंसान डरता है, गलत काम करके तो क्या करना। और फिर अगली आयत में ये जो बात कही गई कि लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, तो यहाँ अल्लाह के रास्ते से क्या मुराद है? इस्लाम का रास्ता, नबी का रास्ता, किताब का रास्ता। अल्लाह के रास्ते से कैसे रोकते थे? मुख्तलिफ तरीकों से। खुद भी कुफर पे थे, जब खुद कुफर पे थे तो नबी के इस रास्ते पे चलने वालों को भी उससे दूर कर देते थे। फिर उसके बाद आप देखिए कि इनकी इतनी जुरत हो गई थी कि दूसरों को दीने हक से रोकने की कोशिशों में लगे रहते। उनका दिन रात का फिक्र क्या था कि हम सीधे साधे मुसलमानों को दीन से दूर कर दें। ये जो लफ्ज है ना, तबगून है इवजा, इवज लफ्ज नया है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, आइन वाव जीम है। इवज का लफ्ज जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ना, इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन के फर्क से बदल जाती है। टेढ़ेपन को कहते हैं, एक होता है अवज और एक होता है इवज। अवज होगा ना तो वो टेढ़ापन जो नजर आता है, और इवज क्या होता है, टेढ़ापन है, नजर नहीं आता। बस आप देखिए कि एक पेन लेकर मैं आपके सामने उसको मोड़ दूं तो टेढ़ा होगा ना, कोई भी आप में से देखेगा आप समझ जाएंगे कि ये टेढ़ा है। लेकिन एक पेन को पानी के ग्लास में डिप कर दें तो देखने में क्या लगता है, टेढ़ा है, बाहर निकालेंगे तो सीधा है। इसी तरह से ये इनकी छुपी हुई साजिशों की तरफ इशारा है कि ये इस किस्म के काम करते थे, इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते थे, खुद सच्चे बनते थे, नजरों में रहते थे, लेकिन असल में पीछे से गलत काम करते थे। ये बहुत खतरनाक होता है, ये रवैया बहुत खतरनाक होता है कि दोस्त के रूप में दुश्मनी कर देना। इसीलिए अल्लाह सुबहाना ताला ने इनको इस चीज की समझ दे दी कि मुसलमानों को ना भी पता चले लेकिन मुसलमानों के रब को पता है कि तुम क्या टेढ़पन इस्तेमाल कर रहे हो। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जमीन के ना हमवार होने को भी अल इवजु फिल अर्द कहते हैं। इसी तरह से अवज उस टेढ़ेपन को कहते हैं जो आंख से दिखता है, और इवाज आइन वाओ अलिफ जीम उस टेढ़ेपन और ना हमवारी को जो अकल और बसीरत से देखी जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, आजकल मुआशरे में बहुत टेढ़पन है और बहुत निजाम जिंदगी टेढ़ा हो गया, तो ये वो सारा कुछ उसमें है। आम दीवार टेढ़ी होगी तो अवज होगी, लेकिन वो चीज जो बाहर नजर ना आए लेकिन वो दूसरी तरह से होती है। फिर आप देखिए कि तब हु नहा के अंदर हमने देखा था कि मेहनत करके कुछ चाहना, तब हु नहा इवाजा, इससे इशारा है कि ये जो कोशिशें करते हैं वो कोई आसान नहीं होती, पूरी एनर्जी लगाकर पूरी मेहनत करके ये सब कुछ करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, जो तुम करते हो अल्लाह को इसका खूब पता है। इन आयतों को पढ़ के मुझे ऐसे लगा एकदम कि जैसे क्या दुनिया वालों की सीआईडी होगी जो अल्लाह ताला की सीआईडी है। आज दुनिया में मुसलमान भोले बने रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कौन हमारे से दोस्ती कर रहा है, कौन दुश्मनी, किस में उसका अपना फायदा और किस में हमारा फायदा है। लेकिन अल्लाह ताला की इन बातों को पढ़ सुनकर ये महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने इनके लिए इन सारी चीजों को रख दिया कि तुम्हारी छोटी से छोटी हरकत का मुझे पता है। अब आखिर में दो आयतों में मुसलमानों को वॉर्न किया जा रहा है। क्या हुआ, अभी दो आयतों में अहले किताब को डांटा गया कि सीधे हो जाओ, ठीक हो जाओ, गलत काम ना करना। अब मुसलमानों को कहा जा रहा है, ये तुम इतने भोले क्यों बन रहे हो भाई, तुम्हें समझ नहीं है, तुम इनकी साजिशों को देखो। आयत 100 और 101, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने ऊपर लीजिए, आपको पुकारा, मुझे पुकारा, हम में से हर एक जो ईमान का दावा करता है, इन तुतीयु फरीक मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब, अगर तुम कहना मानोगे एक गिरोह का अहले किताब के, यानी अगर तुम अहले किताब के किसी गिरोह की बात मानोगे, मान रहे आज के मुसलमान सारी मानते हैं, तो ये करेंगे क्या, यरुद्दुकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन, ये तो तुमको तुम्हारे ईमान के बाद फिर कुफर की हालत में लौटा कर ले जाएंगे। लेके जा रहे हैं आज, जुबान से तो कोई कम ही कहता है लेकिन तौर तरीकों अमल रवैयों में, और आज नई नस्ल को जरूरत भी मिल गई, वो जुबान से भी कहने में नहीं शर्माती, नहीं हम इस दीन पे मत मार देते हैं तुम्हारी, तुम्हें गलत चीजों में डाल देते हैं, कितना देखिए लम्हे फिक्री है। अल्लाह सुबहान तआला जब ये बात कहे तो आप सोचिए कि ये बात कितनी बड़ी होगी कि देखो ये तुम्हें तुम्हारे दीन से बदल देंगे, तुम्हें अपना दीन ही नहीं अच्छा लगेगा। और सच्ची बात है, जब मुसलमानों को अपना इस्लाम ना अच्छा लगे तो दूसरों को कहाँ लगना है। आज बड़े बड़े फोरम्स में बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे बिठा कर जब दो मुसलमान दीन की धज्जियां उड़ाते हैं तो आपका ख्याल है दूसरे नहीं देखते, दुश्मन भी देखते हैं। वो कहते हैं कि इनको देखो, ये जो हमें ऐसे कह रहे हैं पता नहीं खुद इनके घर में कितना है। आप देखिए, जिस घर वाले लड़ेंगे ना वहां के मेहमान भी लड़ेंगे, माँ बाप लड़ेंगे ना तो बच्चे भी लड़ेंगे, जिस घर में माँ बेटे की लड़ाई होती है ना कल सास बहू की भी होगी। ये फितरी सी बात है, झगड़ा झगड़े को जन्म देता है। आज हम मुसलमानों के लिए जो बात अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ बयान किया, अगर उसको हम सामने रख के पल्ले से बांध लें, आज के बाद कभी इस्लाम या किसी इस्लाम वाले को बुरा भला नहीं कहना, दूसरों के सामने तो दूर की बात है, अकेले में भी नहीं कहना, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, क्योंकि ऐसी बातें फिर दीन से बदल देती हैं। और यकीन कीजिए, आज हम मुसलमानों के लिए ये लम्हा फिक्री है कि आज हम बात करते करते अपने इस्लाम को बुरा कहने लगे। आप इस आयत की शिद्दत को महसूस करें कि ये तुम्हें दीन से फेर देंगे, अकल बदल जाती है। आप ब्राउन कलर के ग्लासेस लगाएंगे, आपको हर चीज ब्राउन लगेगी, नीली लगाएंगे नीली लगेगी। इससे आप देखिए कि जिंदगी में फिर बिगाड़ पैदा होता है। ये सारा मुआशी बिगाड़ भी है, इकोनॉमिकल टेररिज्म कह लें, ये बिगाड़ जो है आज के दौर में सियासी बिगाड़ भी है, ये फिरका वारियत का बिगाड़ भी है जो आज पैदा किया जा रहा है। और ये सारा मीडिया का जो जोर देख लीजिए, नेट को देख लीजिए, हर दौर में ये चीजें थी, लेकिन आज बिगाड़ बढ़ गया। हर चीज के पीछे आपको एक खुफिया हाथ दिखेगा, दूर बैठे आपके बेडरूम के जज्बात फीलिंग्स तक को ये लोग कैप्चर करने को तैयार हैं। आपके गांव में बिजली पहुंची है कि नहीं, पानी पहुंचा है कि नहीं, लेकिन इनकी रसाई हो गई। जिंदगी का हर निजाम अपने हाथ में लिया, ये टेढ़पन है। आप देखिए आज मुआशी निज़ाम और माशरती और साथ सबसे बढ़कर जो तालीमी निज़ाम हमारे स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो इस्लामिक है? वहीं से तो सोच का बिगाड़ शुरू हो जाता है। हाल हुलिये को देखिए, रस्म रिवाज को देखिए, तौर तरीकों को देखिए, हर चीज़ में मुसलमान आज ऐसे लगता है कि दूसरों के इशारों पर चलने वाले हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपने दीन की समझ दे। कुरान और सुन्नत की ऐनक लगाकर हम जब दुनिया को देखेंगे तो हमें इस बात की अच्छी खासी खबर है कि अल्लाह ने हमें एक मुकम्मल दीन दिया, इसलिए डांटा जा रहा है। देखो यरुद्द को, और लफ्ज यरुद्द क्या है? रद्द करना, रिजेक्ट करना। रद्दी की टोकरी क्या होती है? तरदीद करती हूँ, वही लफ्ज है। इस आयत के खास शान नजूल भी है। रिवायत में आता है कि शमास बिन कैस यहूदी औसो खजरज के पास से गुजरा और इनको आपस में बातें करता देखकर हसद किया कि जमाने जाहिलियत में इस कदर दुश्मनी थी और आपस में मोहब्बत है। यानी इस्लाम के आने से मदीना के पहले जो लोग थे वो जुड़ गए, आपस में शीरो शकर हो गए। इस यहूदी से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने आकर एक यहूदी नौजवान को हुक्म दिया कि जरा औस और खजरत के मुसलमानों की मजलिस में जाकर जंगे बुआस का जिक्र तो छेड़े, इनको वो वक्त याद दिलाए। चुनाचे इसने ऐसे किया। अब जंगे बुआस क्या थी? नबी सल्लम के मदीना आने से बहुत पहले से एक जंग लगी हुई थी, 200 साल तक कहते हैं ये जंग जारी रही थी, नस्लों की नस्लें मारी गई। वही औस और खजरत जो दो भाई थे, एक ही बाप की औलाद, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ऐसी मवाखात कायम की कि सारे दोस्त हो गए। तो अब जो यहूद के अजायम नहीं पूरे हो रहे थे ना, हथियार नहीं बिक रहे, लोगों की लड़ाइयां खत्म हो गई, इसने कहा जाओ जरा वो पुरानी लड़ाई छेड़ो। ये जैसे हमारे यहाँ कभी शादियों के मौके पर छिड़ जाती है, शादी की कुर्सियां एक दूसरे पर फेंक जाते हैं कि तुमने फलां मौके पर ये किया था, ये किया था, वो किया था। खैर यही हुआ, उसने जाके जब जंगे बाज की बातें की, लोगों ने एक दूसरे पे फख्र शुरू कर दिया, मेरे इतने मारे गए, मेरा बाप वो, मेरा वो, ये वो था। कहते हैं कि कबीला औस से औस बिन कैनती और खजरा से जब्बार बिन जाफर, ये दोनों आदमी खड़े हो गए, आपस में गुफ्तगू की, जिससे दोनों कबाइल गुस्से में तैयार हो गए। यानी कहने लगे, कहते हो तो फिर एक दफा लड़के दिखाते हैं। वो जैसे खुजली होती है ना, आदत हो जब किसी काम की तो की ना हो वो काम। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची, किसी ने कहा अल्लाह के नबी उधर तो लड़ाई होने लगी है, अल्लाह से फितनों से बचाए। फिर आप वहां आए और आपने सबको नसीहत की और सुलह कराई और सब ने आपके हुक्म के आगे अपनी गर्दनें झुका दी। इधर अल्लाह ताला ने औस खिजरज को ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा, और ये जो शमास बिन कैस के बारे में कि या अहलल किताब लिमा तसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। तो आप देखिए, ये साजिशें कल भी होती थी, कल जितने लोग थे उसके लेवल पे होती थी, आज बड़े लोग हैं, आज मीडिया और नेट है, करना क्या है? अपने आप को जोड़ो। इसलिए आखिरी आयत में आप देखिए कि मुसलमानों को एक मनहज और एक तरीका दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुम्हें ये आज भी लड़ाना चाहेंगे, तुम जरा सोचो, वह कई फतक फुरून, और तुम कुफर कर भी कैसे सकते हो। वन तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, जबकि तुम पर पढ़ी जाती हैं अल्लाह की आयतें। कहाँ? मदीना में उतरती थी ना, आज तो नहीं पढ़ी जाती ना। कौन सा मुसलमान घराना है जहाँ कुरान नहीं पढ़ा जाता? ये चौथा पारा हम नहीं पढ़ते? हो सकता है सुबह ही आधे मुसलमानों के घरों में चौथे पारे के शुरू की तिलावत हुई हो, किसी को पता ही कुछ नहीं। अल्लाह कहते तुम्हारे घर में कुरान पढ़ा जाता है, वफीकुम रसूलुहू, और तुम्हारे बीच में उसका रसूल भी है। वहां तो वाकई मौजूद थे, यहाँ लोगों ने खुद ही कर लिया मौजूद है, हाजिर नाजर है, मौजूद है, लेकिन आज नबी की हदीसें, नबी की सुन्नतें, नबी की सीरत मौजूद है। وہاں بنفس نفیس رسول موجود تھا، لیکن پھر مسلمانوں میں اختلاف کا خطرہ پیدا ہو گیا جو بر وقت آپ کی مداخلت سے دور ہوا۔ آج کا سوچیے کیا کریں، اب آپ کہیں گے آج تو نبی نہیں ہے، ہے نا سوال، اب کیا کریں؟ اس کا جواب ہے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو محکم پکڑ لے اللہ کو، جو چمٹ جائے اللہ سے۔ کیسے اللہ سے کیسے چمٹیں گے، وہ کوئی ہمارے سامنے تھوڑی ہے، نہیں، اللہ کی کتاب۔ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ، اگلا سبق بہت اہم ہے، کل تو میں کہتی ہوں اپنی ساری دوستوں کو پھر بلا لیں جن کو تکمیل پہ بلایا تھا، اگر کسی کو شوق ہے کہ ہم دیکھیں کہ آج امت مسلمہ کا کیا علاج ہے، کیا حل ہے۔ اہم ترین سبق میں سے اہم سبق ہے کل کا، سورۃ آل عمران کا، اتنا اہم ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ مَن یَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو اللہ سے چمٹے گا اس کو تو ہدایت مل گئی صراط مستقیم کی۔ ہدیہ ہے مجہول، فعیلہ دوریبہ، خود نہیں وہ گیا، اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا پتا چلا کہ جو کوئی اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے، اسے تو ضرور صراط مستقیم کی ہدایت ملے گی، وہ ضلالت اور گمراہی کے خطروں سے محفوظ ہوگا۔ آپ دیکھیں دودھ پیتا بچہ جب خطرہ محسوس کرتا ہے نا، تو دوڑ کے آ کے اپنی ماں سے چمٹتا ہے۔ اب اس کو لگتا ہے کہ میں مضبوط قلعے میں آ گیا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، حالانکہ وہ ماں بیچاری سارے خطروں سے تو حفاظت نہیں کر سکتی، ہو سکتا ہے کوئی ظالم آئے تو ماں کی گود سے بچے کو چھین کر لے جائے، رائٹ، کوئی کسی کو تلوار میں ڈال دے اور نظے میں پرو دے، لیکن بچہ تو یہ سوچتا ہے نا کہ میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ کی ذات کے دامن میں پناہ لینے والا ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ کی نجات کا نسخہ، یعتصم باللہ، جس نے بھی زندگی کے جس دور میں اللہ کا دامن تھام لیا، اللہ نے اس کو فتنوں سے، آزمائشوں سے، مشکلات سے بچا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی باتیں، کہانیاں پڑھتے ہوئے مت سوچئے کہ یہ ہمارے اوپر فٹ نہیں ہوتی۔ آج پوری دنیا میں مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، اور مسلمان بدنام ہو گئے، بد سے بدنام برے والی بات مسلمان پہ آ گئی، لیکن اس کا علاج کیا؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، یہ نہیں کرنے دیتا شیطان۔ زندگی میں اتنی ڈسٹریکشنز، رات جاتے کی خود کی ڈالی ہوئی، آج ڈاکٹر پہ جانا، آج بیمار کو دیکھنا، آج ادھر کرنا، اہم فرض چھوڑ کے ہم نفل عبادتوں میں گھسے ہوئے اس وقت، اور حالات ہمارے کیا کہ تن پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں دین کے حساب سے، پتہ نہیں کدھر سے کھینچ کھانچ کے اللہ نے کل ہمارا حساب کرنا ہے۔ اپنے جوگے نہیں ہیں، دوسری دنیا کے لیے تڑپ رہے ہیں اور پریشان ہیں، کبھی کسی کی خاطریں کر رہے ہیں تو کبھی کسی کی خدمتیں کر رہے ہیں۔ اگر ایک انسان اس چیز کو سوچ لینا کہ میں نے خود کو بچانا ہے، تو پھر کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ اور یقین کریں ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے کتنی بڑی دولت ہے اللہ کی، یہ کتاب جس نے آپ کو مجھے بچایا ہوا ہے۔ یہ جو لفظ یاد تسیم ہے، اس کو تھوڑا سا کھول کے دیکھ لیجئے، عین سواد میم اس کا روٹ ہے، جو لفظ ہے عصمت، وہ بھی اسی سے ہے، روکنا یا منع کرنا یا باندھنا۔ گردن کے پٹے کو بھی عصمہ کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے آسام۔ اسی طرح الاسام، عین کی زیر کے ساتھ اسام، محمل کی اس رسی کو کہتے ہیں جو محمل کو جمانے کے لیے اس کے ایک طرف باندھی جاتی ہے، جو سلکی کپڑا ہوتا ہے نا وہ کھسکتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک رسی باندھی جاتی ہے، وہ سیدھا رہتا ہے، ایسی دو رسیوں کو اسامان کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈول یا مشک کی وہ رسی جس سے باندھ کر ان کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈول باندھا ہوگا پیچھے کندھے پہ لٹکایا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے الاسام من دلوتی۔ تو اسما کیا ہوا پھر ساری بات میں، کہ کسی چیز سے بچا لینا، اس نے بچا لیا۔ اے تسم جب بن جائے نا، تو مضبوطی سے تھامنے کا معنی بن جاتا ہے۔ اے تسم باللہ کے معنی کیا ہوں گے، لکھیے گا، اللہ کی حفاظت میں آ کر محفوظ ہو گیا۔ اس کو محسوس کریں نا، تو آپ کو یہاں ایک دم سکون اور خوشی کا احساس ہوگا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ پناہ لینا زندگی کو مشکلات اور آزمائشوں سے بچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے قانون خداوندی کو مضبوطی سے تھام لیا، اسے زندگی کی متوازن راہ کی طرف رہنمائی مل گئی۔ یہ بھی معنی ہے، بیلنس زندگی ہوتی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فرق ہوتا ہے۔ فرائض اور سنتوں کا فرق پتہ چل جاتا ہے. ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے تو وہ اس چیز کے مطابق کتنا اللہ کے دامن کو تھاما ہوا ہے. اور اب دیکھیے ہم مشکلوں میں چھوڑتے ہیں, حالانکہ امیجینیشن میں لائیے, کوئی کسی رسی کو عام حالات میں پکڑے نہ پکڑے, ذرا سا جھٹکا پڑے گاڑی میں تو پکڑنی پڑتی ہے. جہاز میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوتی, ذرا جھٹکے پڑے تو ہاتھ کدھر جاتا ہے, باندھتے نا, کوئی کھول دے کے نہیں, پتہ نہیں اب جہاز گرنا ہے تاکہ میں نے بھاگنا ہے تو پھر تو گرے گا نا. ہم مشکلوں میں چھوڑتے ہیں, واللہ ہی ذرا سوچئے گا جا کے اس جملے کو, آج کا مسلمان مشکلات میں اللہ کا دامن چھوڑ دیتا ہے, خوشیوں میں اللہ کا دامن چھوڑ دیتا ہے, آزمائشوں میں چھوڑ دیتا ہے, اور عام حالات میں کہتا ہے چلو آج پھر نماز پڑھ ہی لوں, چلو آج کلاس میں ہو ہی آتی ہوں, چلو آج جا کے ذرا کسی کو نیکی کی بات بتا ہی آتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اعتصام باللہ کی توفیق دے دے. آج اللہ کے دامن کو تھامنے کی بات ہے, کل کے سبق میں اللہ کی کتاب کو تھامنے کی بات ہے. جس جس سے پیار ہے اس کو پیار کے ساتھ دعوت دے دیں, خود بھی بیٹھیں, انگلوں کو بٹھائیں, اور پھر جس کے نصیب میں جتنا ہوگا. آپ کا میرا کام صرف محبت کے ساتھ دعوت دینا ہے, بتانا ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں بتایا نہیں, کل قیامت کے دن ہمارا دامن تھام لیں گے یہ لوگ, تمہیں تو پتا تھا مجھے کیوں نہیں بتایا. آپ کہتے نا یہاں سے میں سن کے جا کے بتاؤں گی, کوئی فائدہ نہیں ہے, بتا لے آپ کا دل کرے, کوئی سنے گا نہیں, ایک کان سے سنتے ہیں دوسری سے نکالتے ہیں. اور آج تو علم اتنا سستا ہو گیا, ایک کلک پہ چار چار میسج فارورڈ کر دیتے ہیں, پڑھتے بھی نہیں حدیثیں آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, آیتیں پڑھتے بھی نہیں آگے کر دیتے ہیں. تو علم کی قدر کریں, اس کے لیے بیٹھیں, بلائیں, گھر سے نکلیں. ہماری گاڑیاں حق رکھتی ہیں کہ ہم اس پہ بیٹھ کر اللہ کے راستوں کی طرف جائیں, انشاءاللہ اس سے پھر انسان کی زندگی میں خیر آئے گی. اور میں ان آیتوں کو پڑھ کے اداس ہو جاتی ہوں کہ فیکم رسول اللہ, تمہارے اندر تو اللہ کا رسول ہے. کتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہوگی اللہ کے نبی کو, لوگوں کو بھگ ٹوٹ جہنم کی طرف جاتا دیکھ کر, اس کا ایندھن بنتا دیکھ کر. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ تڑپ لگا دے.
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم